مسلمان ممالک کے تمام تر تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ और बार बार शिकस्त देकर कई और बीमारी के ऊपर भी कब्जा कर दिया, मसलन कोर्टों के ऊपर किसी ने कब्जा कर दिया, दिमाग के ऊपर किसी ने कब्जा कर दिया, यानी सलमान को हर तरीके से जबरदस्ती रिश्वत दिया। अभी दुनिया का एक कानून है मुझे कि कोई इंसान कितना ही कमजोर क्यों ना हो, जब उसको बहुत ज्यादा रिश्वत किया जाता है तो कभी ना कभी वो जज्बा दिखाता है, कभी ना कभी कभी कोई रिएक्शन आता है। इनको भी मालूम था कि हम सलमान के साथ क्या कर रहे हैं, इसलिए आज से कमजोर कर रहे हैं, सियासी लिहाज से रुसवा कर रहे हैं, आजादी और हुकूमत के एतबार से गुलाम बनाए हुए हैं, सहाफत के एतबार से पाशा में मुबतला किए हुए हैं। इनको पता था मुसलमान कभी ना कभी जागेंगे, लेकिन इन्होंने मुसलमानों को जागने से रोकने के लिए बहुत सारे जरिए बनाए हुए थे। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ा जरिए के पास है वो करता वाले का जरिए है, जहां से भी एहसास करें कि मुसलमान मेरा होने की तरफ जा रहा है दुनिया के अंदर, इसलिए कौम को मजबूत करने के लिए सलमान को एक बड़ा हथियार यह है कि आप उसको सख्त और गुर्बत की तरीके से मजबूर कर दें, अमीर करते हैं उसे, गरीब करते हैं, जब वो अपने पेट को भरने के लिए जो दुनिया में मजबूर रहेगा तो वो कहां जरूर मुझे ट्राई करके अफ्रीका के आंदोलन कर रहा है, इसराइल के आंदोलन कर रहा है, वो उसके अंदर मजबूर रहेगा। दूसरा रास्ता यह है कि उसको फिर मुबला कर, जैसे ही वो कहीं ये कोशिश करे कि घर से ताकि अपने आप को हासिल करे, कोई ना कोई फरमाना कार्रवाई हो जाए जिसके अंदर सहायता और जवाब यूज कर दे। अगर एक तीसरा रास्ता भी है जो बाद किसान मालिक ने अख्तियार किया हुआ है और वो है अय्याशी और दस्तर परस्ती का रास्ता, इसके अंदर इतनी दौलत दे दी जाए आवाम को, इतना ज्यादा दस्तर परस्ती में मुबतला कर दिया जाए कि वो अपने आदाब की तरफ तवज्जो ना दे सके, क्योंकि जाहिर है कि ये काम सब किसान मालिक के अंदर हो पाएगा। जैसे बुनाई के अंदर मिसाल के तौर पर हो जाएगा जहाँ दौलत से कहा जाए, और इसी अंदर मिसाल के तौर पर यूएई के अंदर हो जाएगा जहाँ वो अपने हर सिटीजन को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दिया कर रहे हैं, बाकी मालिक के अंदर इसका इम्कान नहीं है। फिर उन्होंने ये काम किया कि अक्सर स्थानीय मालिक को गुर्बत में मुबतला किया, उनको फिरफा वाली में मुबतला किया और उनको अय्याशी में मुबतला किया, ताकि मुसलमान उनको तवज्जो ना दे सके।
पहली दफा इस्लामी खिलाफ का सिस्टम मुसलमानों को बहादुरी कर रखती है, जुरा कर रखती है,
ये भी मैं आपको जानना चाह रहा हूँ कि देखिए सबसे पहला मुल्क जिसके बारे में खतरा था कि वो जल्द को हासिल करेगा वो पाकिस्तान था। अगर आप जब भी अच्छे तौर पर गौर कर रहे हो तो पाकिस्तान ईरान के मशरक में वाक है, तारीखी एतबार से ये बेहतर इसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान कहते हैं, ये हमेशा ईरान से मुतासर रहा है, हमेशा ईरान से मुतासर रहा है। और खासकर आखिरी 500 साल के अंदर जो कुछ ईरान में होता था वो हिंदुस्तान को मुतासर करता था। इतफाक के अंदर यहां पर भी बहुत बड़ी बादशाह थी, यहां पर भी बहुत बड़ी बादशाह थी, यहां पर सरहदी हुकूमत थी और यहां पर मुगल बादशाह थी। इन्होंने ताल्लुकात भी कभी अच्छे होते थे, कभी बुरे होते थे, लेकिन सहाफती एतबार से ईरान बहुत ज्यादा मुतासर करता था पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अमरीकी डॉक्टरों को गिराया, जिसके नतीजे में तकरीबन 3,500-4,000 अमरीकी लोग मारे गए। और इस नाम के ऊपर अमरीका ने एक जंग का आगाज किया जिसके अंदर अब तक कई लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं।
लोग खड़े हो गए,
वहां होंगे तो मुसलमान पार्टियों को कामयाबी हासिल होगी, मुसलमान को उसको सबसे ज्यादा वोट मिलना शुरू हो गए। अगर आप आपके नजदीक इस्लाम नहीं था तो क्यों उन्होंने इंतखाबात में मुसलमानों को जीतना शुरू कर दिया, मुसलमान पार्टी को भी कामयाबी नसीब होना शुरू हो। और इसी तरीके से हम दूसरे मालिक के अंदर भी देखते हैं, पर पहली चीज हमें चाहिए है वो इस्लामी फिक्र है कि लोग इस्लाम को अपना मद्देनजर रखें, इस्लाम को अपना दावा करें और इस्लाम को अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए ये तमाम तब्दीलियां रुकमा होंगी। लड़ाई क्या करती है, पाकिस्तान के लोग नहीं हो जाते। दूसरी बात ये कि दो फिल्मों के दरमियान धारधार ताकत का कोई ना कोई तवाजुन होना चाहिए। अगर मसलन शिया की तदाद पाकिस्तान के अंदर ना होने की बराबर होती है, यहां पर कवायद नहीं हो सकती। अगर शिया इंतहाई मुख्तसर से होते, मसलन 2% होते, 3% होते, तो यहां पर कवायद नहीं हो सकती।
घरों के अंदर बैठकर छत अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं, हमें इजाजत दे दी।
जिसमें मुसलमानों को आगे ही देने की कोशिश करें। इस्लामी ममालिक के अंदर कोई काम ऐसा हो रहा हो जिसमें मुसलमान जागने की कोशिश करें, वो तो खबरों में भी नहीं आना चाहिए। उसको खबरों में क्या करते हैं, लिहाजा आपने खुद रोक किया होगा। आपके जो जो इस्लामी जदारी की तहरीक के लिए तहरान में कॉन्फ्रेंस में आपने शिरकत की, वापस आकर आपने अखबारों में कहीं ढूंढा भी होगी यहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस की कौन सी खबर आई, तो आप देखेंगे कि शायद दो कॉलम की भी किसी ने कोई खबर नहीं लगाई। आप इस्लाम को दीजिए। दूसरे मामले में, दूसरे मामले में दूसरे मरहले में अपने शौक को बढ़ाइए। तीसरे मरहले में और कोई ना सामने मरहले वाला करके मैं कह रहा हूँ पहले एक साल इस पर काम करें फिर एक साल इसके ऊपर, नहीं तीनों को एक साल काम करने की जरूरत है। लेकिन प्रायोरिटी के अतबार से सबसे पहले दीन, उसके साथ शऊर और उसके साथ इज्तिमा ताल्लुकात रابطہ, और उस रابطے में सबसे अहम सूरत यह कि तमाम मुसलमान रابطے में हो अपने रहबर के साथ, उसके साथ जरूर अपने हाथ में नुमाइंदा काम करें। और जब हम ये सारे काम करना शुरू करेंगे तब हम इम्तिहान के सामने खड़े होंगे। जिस शख्स की जिंदगी में हदफ ना हो उस पर इम्तिहान नहीं आता है, जो सीधे आती है ऊपर बनाया आती है, जो मुसलमान
दुश्मनों का फैलाया हुआ ये जरिया जब इराक के ऊपर अमरीका हमला करने वाला था
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं। अब वक्त के इमाम की तशरीफाती से पहले बेदारी और शऊर के दौर चल रहे हैं, आप इस बेदारी और शऊर का हिस्सा बनेंगे ताकि इंशाअल्लाह जब वो इमाम तशरीफ लाए मैं और आप तो गुरु और सरबुलंद लोगों के सामने बाबा हमने आपकी गैबत के जमाने में जुल्म के सामने सर नहीं झुका, हमने आपकी गैबत के जमाने में जालिम का मुकाबला किया। जालिम को जालिम कहा है मजलूम की नुसरत, अगर जालिम ने अफगानिस्तान को जुल्म किया तो हमने जालिम को जालिम कहा और मजलूमों का साथ दिया, अगर जालिम ने लुबनान और फलस्तीन का जुल्म किया तो हमने जालिम का मुकाबला किया। और मैं आपकी गंदा कायम कर रहा हूँ पाकिस्तानी आवाम को इस बात की सजा मिल जाएगी कि क्यों ये हर मौके पर जालिम को जालिम करते हैं, क्यों ये हर मौके पर मजलूम का साथ देने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की आवाम आपने तकदीर आपने एहतराम आवाम और आप अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर बाफिक्र खवातीन होने के नाते अपने किरदार को समझें और इंशाअल्लाह खुदा आपको इस जिम्मेदारी को अंजाम देने में दाई करना इंशाअल्लाह। वक्त इमाम की तशरीफाती तालीम की दुआ के लिए शहादा के मकाम की बुलंदी के लिए और इंशाअल्लाह खुदा की दीन की नुसरत के नाम शहादत के आरज़ू के लिए दुरूद है मुहम्मद वाले
कल तसव्वुर करना है कराची के अंदर 200 से ज्यादा अफराद
तीसरा लोक में आ गया, मैंने पूरे शहर के ऊपर बहुत ज्यादा सन्नाटा होने लगा, लोग मारे गए वहां पर, हर रोज कम से कम 100 से ज्यादा आदमी शहीद हो रहे थे, शहादत थी उनकी वहां पर, और इस तरह के बाहर के वाले वो एजेंट्स आकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, उन्होंने उनको सजा देने की कोशिश की, लेकिन महमूदार ने कहा कि शामी हुकूमत ने जो अच्छा काम अंजाम दिया ये कि उन्होंने अपनी आवाम का साथ दिया, अपनी आवाम का साथ देकर इन बाहर के एजेंट्स का मुकाबला करने की कोशिश की, इस वजह से शामी हुकूमत अभी तक कायम है। अगर इस हुकूमत के आवाम से ताल्लुकात ना होते तो आज से कई महीने पहले पिशावर जैसा की हुकूमत खत्म हो जानी चाहिए, सियासी तौर पर खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की वो पहला मुल्क था जिसने मुकाबला किया और जो हुकूमत अभी तक कायम है, और अब इरफान इस बात का शायद अब शामिल हुकूमत को हटाना अमरीका के लिए आसान नहीं है। Thank you. مناسبت کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے. تھوڑ تھوڑ سے ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوگا, لیکن ہمارا اتحاد کا اظہار بہت ضروری ہے. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کون سی دیوی سب سے اچھی دیوی ہے, تو میں کہوں گا وہ جو سب سے زیادہ پرامن ہو اور وہ سب سے زیادہ منظم ہو. وہ دیوی سب سے اچھی دیوی ہے, منظم ہو اور پرامن ہو وہ دیوی سب سے اچھی دیوی ہے. اس میں آپ کا ہونا بہت اچھا ہے, اس سے آپ کا اظہار ہوگا کہ مسلمان مستحق ہے, مسلمان مشہور ہے اور ارادے اس کے دہشت گردی سے ختم نہیں ہوئے. اپنے گھر سے اسلامی مزاج کی شروعات کیسے کریں جب ہم یہ کریں؟ میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گا. ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچا کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں اسلام پھیلانا ہے تو پہلے اپنے ملک میں پھیلاؤ, اگر ملک میں پھیلانا ہے تو پہلے اپنے شہر میں پھیلاؤ, شہر میں پھیلانا ہے تو پہلے اپنے گھر میں پھیلاؤ, گھر میں پھیلانا ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام لاؤ. البتہ اس پہلے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے اوپر اسلام نافذ کروں اور دنیا کو بلا دوں اس سال بات دیکھوں گا اس نے اس کا ہی مطلب نہیں. سب کے اوپر ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن سب سے پہلا کام یہ کریں آپ اپنے اوپر اسلام نافذ کریں جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہے, اور دوسروں کے ساتھ رابطے میں رہنے کی کوشش کریں. بس یہ قانون صحیح قانون ہے کہ ہم چھوٹے دائرے سے شروع کریں, لیکن یہ قانون غلط ہوتا ہے کہ اگر ہم چھوٹے دائرے سے شروع کریں گے اور بڑے سے کام کر کریں گے, بڑے سے کام کرتے کریں گے چھوٹے دائرے سے شروع کریں گے اور بڑے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, بڑے کے ساتھ رابطے ہی کریں گے. بس آپ اپنے گھر سے شروع کیجیے, بلکہ آپ اپنے آپ سے شروع کیجیے, اپنے آپ سے شروع کیجیے اور آہستہ آہستہ اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیے. ایک بار آپ کی خدمت میں اسماعیل کے طور پر عرض کروں گا, دنیا میں کسی بھی کارآمد فکر کو روکنا ناممکن ہے, اور جس فکر کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو پھیلانا ناممکن. اگر فکر کارآمد ہے خود با خود پھیلے گی. مثلا فرض کیجیے یہ پنکھے شروع میں ہم نے نہیں بنائے, کسی اور نے بنائے, ہم نے کیوں خریدے؟ اس لیے کہ ہمیں کارآمد لگے, ہمیں مناسب لگے, ہم نے خریدے. اگر آپ کے پاس دین ہے اور آپ کا دین کارآمد ہے تو ہر کافر بھی آپ سے دین لے گا, اور اگر آپ کے پاس دین ہے ایسا دین ہے جس کے اندر کوئی کارآمدیت نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ کا بچہ بھی آپ سے نہیں لے گا. آپ کے دین کو کارآمد دین بنانا, آپ کا دین مؤثر دین ہونا چاہیے. آپ کسی ایسے دین کے معتقد ہو جائیں جس کا زندگی میں کوئی مثبت اثر نہیں ہے, اس دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے پائیں. لیکن اگر آپ ایسے دین کے معتقد ہوئے جس کا آپ کی زندگی پہ مثبت اثر ہے, انسانیت کو اس سے نصیب ہونے والا ہے, تو لوگ خود بخود آپ سے یہ دین لیں. اگر مسلمان ترقی کرتے رہے نہ صرف مانوی اعتبار میں ہر زمینے میں, بلکہ مانوی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے خود بخود دنیا ہم سے دین لے گی. آپ ہی ایسے بعض لوگ ہم سے بات ہو کے سوچتے ہیں ہم دین پھیلانا چاہتے ہیں, ہمارے گھر والے ہم سے نہیں لینا چاہتے, اس وجہ یہ کہ ہم سمجھا نہیں پائے کہ دین پایا جاتا ہے. اگر ہم سمجھا پاتے ہو تو پھر کون ہم سے دین نہیں لے گا, سب ہم سے دین لیں گے. بس اپنے دین کو سب سے پہلے کارآمد دین میں کریں گے. اس کا ایک دوستانہ فلم میں کیا اسلامی بیداری کو دبانے کا ذریعہ ہے, یہ چاہتے ہیں اسلامی بیداری کو ڈائیورٹ کرے, منحرف کرے, اسلامی بیداری کے چہرے کو مخدوش کرے. ان کے چند اہداف ہیں, نمبر ایک چاہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ظاہر ہو جائے, دوسرے اقوام کے سامنے چاہتے ہیں مسلمان ایسا ظاہر ہو کہ وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں, تو جان بوجھ کر پروکوک کرتے ہیں, چاہتے ہیں مسلمان دہشت گرد نظر آئے, خاص طور پر بھارت گری کرتا ہوا نظر آئے. ہمیں سمجھتا ہوگا کہ ہمیں ان گستاخیوں کے خلاف رد عمل بھی نکالنا ہے اور اپنے آپ کو دہشت گرد نہیں دکھانا, اپنے آپ کو پاشا کو پاشا نہیں دکھانا, بلکہ ایک منظم اور کنٹرول ماحول کے اندر اپنے رد عمل کو ظاہر کرتے ہیں. ہمارا پاکستانی میڈیا, ہماری پاکستانی میڈیا پر جو بحث ہوتی ہے اور جو فرقہ وارانہ حد کے خلاف بیان دے رہے ہیں, اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے آپ کو بیان دے دیا, یہ کیا بیداری ہے یا دھوکہ ہے؟ آیا اس طرح کی بحث دیکھنا چاہیے؟ ایک مجموعی اصول آپ کی خدمت میں عرض کروں, شاید آپ قبول کریں شاید آپ قبول نہ کریں. میں نے اپنی زندگی میں اصول بنایا ہے کہ میں ٹی وی کے اوپر ہونے والا کوئی ٹاک شو نہیں دیکھتا, मिनिस्टर को उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे ज्यादा मामूला जिन टॉक शो से मैंने आज किया कोई चीज हासिल नहीं होगा। मामूला इंसान सोच होते रहते हैं इसने मना बात की मना बात की इसके नतीजे में कुछ नहीं होने वाला है। ये हमको मजबूर रखने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ बातें कर ली थी। आप अपनी मालूम कहीं और से हासिल कीजिए और एक और बात कह सकता हूँ अगर इंसान कोशिश करें आपका जहन खुद एनालिसिस करें खबरें आप दूसरों से लें एनालिसिस अपने दिमाग से करें खबरें दूसरों से चलनी पड़ेगी या मिलनी पड़ेगी लेकिन एनालिसिस खुद करने की कोशिश करें तजिया पहले खुद करें मसला को खुद समझने की कोशिश करें। लिखा है कि जो मजबूरी तौर पर उन्होंने लिखा है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आप इसको इम्तिहान का नाम देना पसंद करेंगे या मुकाफा के अमल और बदला का नाम देंगे। एक ही बात है एक शख्स के लिए इम्तिहान दूसरे के लिए मुकाफा तीसरे के लिए बदला और मुसीबत हो सकती है। एक ही बात है एक ही जल्दा तीन मुख्तलिफ अरामीन से आ सकते ज्यादा इसलिए आप तफसील में चाहिए कि ये मुकाफा है सब्र है इम्तिहान है या बला है आप अपने किरदार को समझने की कोशिश कीजिए। अगर
क्या कोई ऐसा मजबूत इदारा है जो जवान नस्ल को आज के मीडिया के
تقسیم پا رہا ہے. آہستہ آہستہ تعلیم کے میدان میں, میڈیا کے میدان میں لوگ بن رہے ہیں, اور مجھے امید ہے ان شاء اللہ اگلے نسلوں کے اندر ہم آج کے مقابلے میں کہیں بہتر مقام پر ہوں گے اور ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ وسائل ہوں گے.
اور ان شاء اللہ ہم اپنے امام کی مسرت کر سکیں, دین کے پرچم